समय तेजी से आगे बढ़ता जाता है। दिन बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, कहाँ पहुंच गए हम? 2020 में, 2020। हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध है, परिस्थितियों से भी युद्ध है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। आने वाले समय को ध्यान रखते हुए हमें अपने अंदर शक्तियां बढ़ानी है, रूहानी शक्तियां, ताकि जो खेल हमें देखना है उसे हम देख सकें, साक्षी हो सकें और संसार को मदद भी कर सकें। ये 2020 मुझे ऐसा लगता है बीच का एक ऐसा साल है जो इधर और उधर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। दशक नया शुरू हो रहा है, हो गया है, तो एक विशेष परिवर्तन होगा इस सृष्टि में। होना तो है ही, चक्र घूम रहा है, कोई इसको ठीक से समझ पाए या ना समझ पाए, ये तो चक्र घूम रहा है। जैसे दिन रात का 24 घंटे का चक्र घूमता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सृष्टि के 5000 साल के चक्र को भी कोई रोक नहीं सकता। तो हमें क्या करना है और क्या सोचना है ताकि हम संगम युग का पूरा फायदा उठाएं। जब हम इस संसार से जाएं, संतुष्ट होकर जाएं, भरपूर होकर जाएं। एक उदाहरण मैं देता हूं, क्लास में आपने सुना है, कोई विदेश में भेजे अपने बच्चों को धन कमाने के लिए, और जब बच्चे वापिस आए तो खाली हाथ आए, तो सिर उठाकर घर में आएंगे या झुकाकर? कुछ भी खुशी नहीं होगी। माँ बाप भी उनका स्वागत ठीक से नहीं करेंगे। हम भी पूरा कल्प खा पी के वापिस जाएंगे अपने घर, बाबा हमारा वेलकम करेगा। लेकिन किनका? जो बहुत कमाकर भरपूर होकर जाएंगे। खाली तो हमने किया था, पर अब भरपूर भी कर रहा है ना बाबा हमें, तो जो भरपूर होकर जाएंगे उनका बाबा वेलकम करेंगे। इस संसार में भी, इस महाकाल के समय में भी उन्हें कष्ट नहीं होंगे। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, साक्षात्कार कराता रहेगा बाबा, सतयुग में मगन रखेगा बाबा, साक्षात्कारों की धूम रहेगी। जो बाबा के बहुत ऑनेस्ट बच्चे, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, वो तो मस्त रहेंगे। उन्हें जैसे विनाश का पता ही नहीं चलेगा, ये टीवी आदि बंद हो जाएंगे, समाचार भी कम मिलेंगे, फोन भी बंद हो जाएंगे, सब खेल अलग हो जाएगा। तो हम सभी अब, जब आप ज्ञान सरोवर में हैं, बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने भी हैं, एकांत में अपने से बातें किया करें। बहुत जरूरी है एकांत और स्वयं से बातें करना। हम क्यों आए हैं बाबा के पास, पहला प्रश्न अपने से पूछेंगे। हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं, कहीं उलझन तो नहीं हो गई है? चेक करेंगे। देखो उलझन कैसी होती है। एक माता का फोन आया आज, मैं फोन तो कम खोलता हूं, आज फ्री था तो थोड़ा खोला। मेरी एक आदत से मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत कपड़े खरीदती हूँ, कर्ज ले लेके खरीदा है, अब कर्ज उतारने की चिंता। मैंने पूछा कितनी साड़ियां हो गई। मैं थोड़ी हंसी कर लेता हूँ ऐसे लोगों से, बहुत हो गई, अलमारियां भर गई हैं। मैंने कहा 200 या 500, बहुत हो गई, अब कब पहनोगी उन्हें, रोज एक पहननी है, साल में 365 चाहिए। तो देखो आत्मा उलझ गई, कहा मेरा योग नहीं लगता। अब योग साड़ियों से लगे, कपड़ों से लगे या शिव बाबा से लगे, योग तो बिना त्याग के नहीं लगता। जो पूरे बैगर बन जाएंगे वही श्रेष्ठ योगी होंगे, जिनसे जिन्होंने पूरी आसक्तियों को जीत लिया हो, चाहे वो कर्मेंद्रियों की आसक्ति हो, ये पहनने ओढ़ने की आसक्ति हो, धन संपदा इकट्ठा करने की आसक्ति हो, जो इनको जीत ले वो योगी बनते हैं। देखो हम यज्ञ में रहते हैं, हमारे पास भी तो चीजें हैं, साधन हैं, लेकिन अनासक्त रहना, उनमें बुद्धि अटक न जाए। ठीक है ठंड पड़ रही है, हमें गर्म कपड़ों की जरूरत है, बहुत ठंड पड़ रही है, वो हमें रखने हैं, लेकिन उनमें हम अटक न जाए। कुछ लोग एक गलती कर रहे हैं, भाई बैठे हैं, बहुत पैसा लोन पर दे देते हैं दूसरों को कि 2-4 साल में डबल हो जाएगा। डबल छोड़ो, कहां पहुंच जाते हैं, जीरो। बहुत आते हैं, हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, माताएं आती हैं, पति को भी नहीं बताया, एक ने तो पता कितना दे दिया अपनी सखी को, 1 करोड़। मैंने कहा तो भूल जाओ बस। कहा भाई जी ऐसा क्यों कहते हो। मैंने कहा भूलने में ही भला है, कम से कम योग तो कर सकोगे, क्योंकि आने वाला नहीं है। कई तो कह देते हैं जब होगा दे देंगे, ना हम जरूर देंगे तुम्हारा, जब होगा देंगे। कईयों का पद को पता चलता है उनके पास है, देते नहीं, अपने मामा को दे दिया, देते नहीं है, नजदीकी संबंधियों से धोखा मिल रहा है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा जो यहां हैं, किसी को देते हो तो ये मान कर देना है कि ये वापस नहीं आएगा, अगर देना ही है तो, नहीं तो इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। बाबा ने श्रीमत दे दी है, विमुरली में आ जाएगी, लोन लेना और देना ये नहीं, उलझन होती है। देखो मदद की किसी को, अपनों को, और अब योग भी नहीं लगता, सारी संपदा दे दी, किसी ने तो ऐसा किया दूसरे से उधार लेकर भी दे दिया, वो मांगने आ रहे हैं रोज, वो देंगे नहीं, पक्का मेंटलिटी है आजकल लोगों की न देना। इसलिए सभी भाई माताएं भी सावधान रहें, अब ज्ञान और योग का समय है, अब असली कमाई का समय है, अब धन के पीछे भटकने का समय नहीं है। ये बात ठीक है या नहीं? तो कईयों को लग रहा धन तो बड़ी अच्छी चीज है ना, अच्छी तो है, पर अगर धन नींद फिटा दे तो मजा कैसे आएगा। बेचारों को अपने बच्चों के लिए भी नहीं रहा, ऐसा ऐसा हो गया है, चले थे साहूकार बनने, सब कुछ गंवा दिया। तो हमें एकांत में अपने से बातें करनी है, हमें बहुत सुख लेना है बाबा से, सारे खजाने बाबा देने आ गया है। मुरली सब सुनते ही हैं, 31 दिसंबर की भी सुनी। हमें स्वमानधारी होना है, इस पे बहुत ध्यान देना है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, ये तो पहली स्थिति है बाबा ने कहा, लेकिन हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। बोलो अमित कैसी, कि निगेटिव रहे ही नहीं, जिसको पॉजिटिव में बदलने की मेहनत करें। और ये कैसे होगा, जब हम स्वमानधारी होंगे, ऊंचा स्वमान है हमारा, उसके चिंतन में रहेंगे, उसके नशे में रहेंगे, तो ये व्यर्थ संकल्प, ये निगेटिव संकल्प कम होते जाएंगे, और हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव बदलने में, व्यर्थ को समर्थ में बदलने में क्या दिक्कत आती है, सबको अनुभव होगा। हम बदलते हैं वो फिर आ जाते हैं, हम उन्हें चेंज करेंगे वो फिर आ जाएंगे। इससे स्थिति बिगड़ती है, इससे शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज है बाबा दो शब्द बोलते आए हैं, स्वमानधारी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। ये दोनों ही हमारी सर्वोच्च स्थितियां हैं, इन पे सभी को एकांत में चिंतन करना है। बाबा ने हमें ऐसे सुंदर स्थान बनाकर दिए हैं जहाँ एकांत मिलता है, जहाँ बाबा के मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, जहाँ बहुत अच्छा माहौल है, इसका फायदा उठाएंगे। ज्ञान सरोवर और पांडव भवन के वाइब्रेशंस योग युक्त करने में बहुत अधिक सहयोगी हैं, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाना है। स्वमानधारी हमें बनना है। स्वमानधारी, एक है स्वमान को याद करना, मैं इष्ट देवी हूं, लेकिन एक है उसके नशे में रहना, उस पे चिंतन भी करना, चिंतन से नशा होता है, तो धीरे धीरे उसका स्वरूप बनता ही जाएगा। और बाबा की उसे एक बात पर हम सबको ध्यान देना है, किसी के लिए ये सोचना नहीं है कि ये बदलेंगे नहीं, ये नहीं सोचना है। हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाते हैं तुरंत, और अगर वो बदलना भी चाहते हो तो बदलने की शक्ति उनकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सब बदलेंगे, सब देवकुल की आत्मा है। बाबा ने बहुत अच्छी लाइन बोली, एक एक लाइन का हमें अभ्यास करना है। सब ईश्वरीय परिवार है, इस नजर से देखना है कि ईश्वरीय परिवार के हैं हम सब, तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छे होंगे। कौन कौन से स्वमान लेंगे बोलो विजय बाबू? स्वराज अधिकारी, ये बहुत हाई क्वालिटी के स्वमान है। बोलो मास्टर सर्वशक्तिवान हेम सिंह भाई, परम पवित्र आत्मा। डॉक्टर बोलो आज, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। विष्णु पवित्रता का सूर्य और माताएं, शिव शक्ति हूँ, बहुत अच्छा है, विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रत्न हूँ, स्वराज्य अधिकारी। पीछे वाली बहनी बोलो, पूर्वज हूँ, बहुत अच्छा, त्रिकालदर्शी हूँ, बोलो दिल तख्त नशीन हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। पीछे वाले भाई, विशेष आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी हूँ, राम संतुष्ट मणि हूँ, संपूर्ण पवित्र सफलता मूर्त। इनको अपने चिंतन में लाना है। स्वमान अर्थात आत्मविमानी स्थिति की भी ऊंची स्थिति। आत्मविमानी में आत्मा हूं, हम उसके गुणों का चिंतन करते हैं, पर मैं कौन हूं इसकी ऊंची स्थिति। बाबा की दो बातें याद कर लें। बाबा ने कहा, तुम्हारा ज्ञान शुरू इससे हुआ मैं कौन हूं, और अंत भी इससे होगा मैं कौन सी आत्मा हूं। एकदम नशा चढ़ जाएगा, उसका स्वरूप बन जाएंगे, स्मृतियां आ जाएंगी। और दूसरी बात बाबा की बहुत अच्छी बात है, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। हम इस बात को रियलाइज करें, शिव बाबा ऊपर से हमें देखता है तो वो हमारी कमियां नहीं देखता, वो हमारे उस महान स्वरूप को देखता है जो हमने प्राप्त किया, जो हमारा है। एक है जो हम प्राप्त करेंगे, दूसरा है हम हैं। हम इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं। बाबा कहा करते हैं ना, किसी बाप को इतने भाग्यवान बच्चे हो नहीं सकते जो सब राजा बनने वाले हों। नशा तो चढ़ाते हैं बाबा, बाप को भी नशा है। देखो बाबा ये शब्द बोलते हैं, बाप को भी नशा है, मेरे सारे बच्चे कितने लक्की हैं, कितने महान हैं, यही इष्ट देव देवियां हैं, यही विश्व का कल्याण करते हैं। दो युग द्वापर और कलयुग किसने संभाला संसार को? इष्ट देव देवियों ने ही तो, उनके सहारे लोग जीते रहे। समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, कोई बीमारी हुई, चलो भाई इस देवी के पास चलो, इस देवता के पास चलो, सहारा बन कर रहे ना। क्योंकि इस समय भी हम सबके सहारे बन जाते हैं, तो ये संस्कार सभी में पड़ जाते हैं। याद रखेंगे, पहले दो युग संभाले, देवी देवता रूप में संसार को संभाला, और इतना सुंदर संभाला कि बाबा भी निश्चिंत होकर ऊपर बैठ गया, अब मेरे बच्चे बिल्कुल योग्य हैं, दो युग तक सृष्टि को संभालेंगे, मुझे देखने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा देखने की जरूरत पड़ गई, थोड़ी मदद करने की जरूरत पड़ गई। तो हमें साक्षी होना है, सकास देना है। देखो विश्व युद्ध की बात तो दुनिया में उभरती रहती है ना, लेकिन अभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो के लड़ाई फिर शांत हो जाएगी। लेकिन विश्व युद्ध फाइनल कब होगा? मुरली का महाभाग सुनो, जब तुम कर्मातीत होंगे। इस कर्मातीत के बारे में बाबा ने एक बहुत सुंदर राज बता दिया, दो चार दिन के बाद मुरली में आ जाएगा। पास विदोनर होने वाले ही कर्मातीत होते हैं। हालांकि मैं, मुझे ख्याल तो था इस बात का, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो ये गुह्य राज है। पहले कर्मातीत होंगे अश्रतन, फिर उनकी लहर से बाकी सब कर्मातीत हो जाएंगे अपने अपने अनुसार। सबको जितने डिग्री तक पहुंचना है उस डिग्री तक पहुंच जाएंगी आत्माएं, पर मुख्य रूप से महाभारत युद्ध का कनेक्शन अश्रतनों की कर्मातीत अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो हमें एक अभ्यास बहुत बढ़ाना है, साक्षी भाव और सकास देने का। साक्षी भाव की प्रैक्टिस सबको करनी है, क्योंकि विनाश काल में सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला विकार कौन सा होगा? काम नहीं, काम तब तक पूरा हो जाएगा, काम का काम तमाम, मोह। विनाश जब होता है तो ये वासनाएं तो शांत हो जाएंगी। कोई व्यक्ति 100 डेड बॉडी पड़ी हुई देखेगा, उसकी वासनाएं जगेंगी नहीं, उसको वैराग्य हो जाएगा इनसे तो। लेकिन कष्ट देगा मोह, मेरे और मेरा। और हमें इस चीज के लिए स्वयं को तैयार करना होगा कि हमें दोनों चीजों से ऊपर उठना है, मेरे और मेरा। अब इस पे चिंतन कर लें, मेरे जो आपके परिवार में अब हैं, क्या वो पिछले जन्म में थे? बोलो, अगले जन्म में होंगे? बदलता जाता है खेल, कर्म अनुसार खेल बदलता है। हमें इस बात को पक्का करना है, किसी की मृत्यु हुई, बहुत आती हैं माताएं बहनें, पति ने शरीर छोड़ा है, तो कोई तो बहुत दुखी हो जाती हैं, कोई अपने को संभाल लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, लेकिन कोई बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती हैं, लेकिन कोई कोई तो ऐसी हैं अपने पति का काम भी संभाल लेती हैं पूरी तरह और बच्चों को भी मजबूती से संभाल लेती हैं। तो माता आई, पति ने शरीर छोड़ा, आयु तो 60 साल की थी उसकी, इसकी 50 के बाहर थी, लेकिन ये बहुत दुखी थी अभी इसी ग्रुप में बाबा के। तो मेरे को आई पूछने में क्या करूं। तो पहले तो सीधी सी बात, जो हम ज्ञानी हैं, ज्ञान तो और सुनाने की बात नहीं है, मैंने कहा देखो जो मृत्यु एक होती है वो ऐसा सत्य है, वो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कई भाई बहने इस बात से भी दुखी होते हैं बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसमें बाबा का रोल नहीं है, इसमें भगवान का रोल नहीं होता मृत्यु में, ये कर्म की कहानी हरेक की अपनी अपनी है। तो मैंने उसे एक बात कही और बातें तो सुनाई कि देखो अब इसको आप स्वीकार करो, क्योंकि जो जाने वाली आत्मा वो वापिस तो नहीं आएगी, अब आपको अपने को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, इनकी पालना करनी है। का ये तो बात ठीक है, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी रहता है। मैंने उसे कहा कि देखो इधर दुख है आपके परिवार में, और जहां उसने जन्म लिया है, बोलो, बच्चा एक माँ की गोद में खेल रहा होगा, उस परिवार में खुशियां मनाई जा रही होंगी कि बच्चे ने जन्म लिया है, तो कैसा वंडरफुल खेल है। एक तरफ दुख, दूसरी तरफ आनंद। तो अगर आपका उनसे प्यार था तो आत्मा से प्यार रखो, अब वो किसी माँ को किसी परिवार को सुख दे रही है आत्मा, आप दुखी ना हो जाओ। थोड़ी रिलैक्स हुई, का भी कुछ अच्छे अभ्यास करो, डेली क्लास में जाओ। क्या होता है इससे, क्लास भी छोड़ देते हैं, क्लास छोड़ते हैं तो वही वही संकल्प भारी करते रहते हैं। क्लास में जाओ, थोड़ी सेवा में लग जाओ, एक घंटा सेंटर में रह के आओ, तो तुम्हारा ये जो छाया होती है ना ये भी दुखों की, ये हट जाएगी। तो हमें साक्षी होना है और इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। मैं भी सोचा करता हूं कि देखो बाबा ने ये विनाश का खेल कितनी बार देखा। राकेश उत्तर देगा, कितनी बार देगा, 100 बार या 150 बार, बताओ, बोलो बोलो। अनगिनत बार देखा, अभी उस अनगिनत में से हम कुछ हजार ले लें, 5000 बार देखा, अब फिर देखेगा कैसा लगेगा उसे, कुछ भी नहीं, ये तो होता ही रहता है ना, आज और कल, कल और आज, फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं सोचा करता हूँ इधर माँ विनाश होगा, लोग हाय हाय करेंगे, और बाबा कहेगा मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, बहुत दुखी थे, आओ बच्चे अपने घर में विश्राम करो, थोड़ा चैन से रहो कुछ समय। तो देखो भगवान की दृष्टि और नीचे वालों की दृष्टि, कितना अंतर हो गया। हमें वैसा ही तो बनना है, हमें भी ज्ञान स्वरूप होना है कि अब ये खेल बदलेगा, जो कुछ आंखों से देखते हैं वो खत्म होगा, हमें इसको स्वीकार कर लेना है। जो मेरे बच्चे हैं, अब मैं सबकी बात कर रहा हूं, केवल माताओं की नहीं, सबकी, जो मेरे बच्चे हैं उनकी हमने पालना की, अपने कर्तव्य पूर्ण किए, अब सबको घर जाना है ना, सबको जाना है, हमें ले भी जाना है। दूसरी बात जो हमें साक्षी बनाएगी, सबका पार्ट अपना अपना है। इस संसार को देखा करें आप, देखो बाबा की मुरलियों में एक बात आती रहती है, चिंतन किया करें, सतयुग था, कैसे थे हम सब, स्वरूप सामने लाएं। पीछे था ना अपना सतयुग का खिला हुआ मुखड़ा, देखते हो बच्चे अपना सुंदर शरीर दिखाई देता है तुम्हें, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने रहता था। तो कैसे थे हम दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीते, कैसे कैसे हम नीचे उतरे। चिंतन किया करें कैसी सुंदर दुनिया थी। अब जब सतयुग ही नहीं रहा, सूर्य वंशियों की दुनिया, तो कलयुग रहेगा क्या? जब सत्य की दुनिया नहीं रही तो पाप की दुनिया थोड़ा ही रहेगी, ये भी बदल जाएगी। तो अब बदलेगा, दिन हुआ, रात हुई, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, ये चक्रव्यूह तो चलना ही है। तो हम स्वीकार करेंगे, ये अभ्यास करने से साक्षी भाव बढ़ेगा। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है और हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। ये दो बातें विशेष रूप से सबको स्मृति में रखनी है। आपके घर में जो घर के लोग हैं, सबकी कर्म कहानी अपनी अपनी है। आप एक बात सुन के आश्चर्यचकित होंगे, कल ही एक का फोन आया मुझे, मेरी 2 साल की लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है। पहले 3 साल की का आया था। मैंने कहा 2 साल की लड़की, अब तो बोलना भी ना सिखाओ। कितने में सीखते हैं बच्चे बोलना? हैं? 1 साल में, 1.5-2, चलो ऐसे ही सीखते हैं। मैंने उससे पूछा, वो क्या तंग करेगी तुम्हें? कहा सारा परिवार उससे परेशान है। अब मेरी भी समझ से बाहर है भाई, हमने देखे नहीं बच्चे ऐसे कैसे तंग करते होंगे पूरे परिवार को, और वो भी 2 साल की। 5 साल वालों की तो कहानी आती है कि बच्चा ऐसा हो गया है, चैन से नहीं बैठता, तोड़ फोड़ करता है, उसको संभालना ही मुश्किल हो रहा है। अब ये 2 साल की तंग कर रही है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, आखिर क्या? उसको भी नहीं बताना आ रहा था क्या। मैंने कहा तो वो तंग कर रही है या तुम तंग हो रही हो? परिवार तंग हो रहा है। देखो ये वाइब्रेशंस की बात है ना। मैंने उसे प्यार से बात की, उसको कुछ अच्छी बातें तो सिखाई, फिर कहा ये तो बहुत तंग करती है। अरे मैंने कहा क्यों परेशान हो रही? तुमने भी उसको बहुत तंग किया था, बदला लेने आई है, हल्की हो जाओ, हल्की हो जाओ थोड़ी, क्यों इतनी दुखी हो रही हो? 2 साल की बच्ची तुम्हें क्या करेगी, उसको तो उठाना भी तुम्हें पड़ता है। अब देखो कैसी गति है ना, कर्म गति, इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो बहुत हल्का अपने को करना है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसको साक्षी होकर देखने की अब से ही आदत डालें। बाबा की मैं 5 बातें आपको बता देता हूं, और 3, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। मूल्यों बहुत आता है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। बाबा उत्तर देते हैं मूल्यों में, कई कहते थे बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, ड्रामा को बदल नहीं सकते, तो उत्तर देते थे बाबा ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामा बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बदलें क्यों? खराब चल रहा हो तो बदला जाता है ना, एक्यूरेट और अच्छा चल रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। दूसरा, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए यहां सभी निर्दोष है। ये बात सभी पक्की करते जाएं, यहां सभी निर्दोष हैं। और इस ड्रामा का अब एंड आ गया है, अब सब आत्माओं को वापिस अपने घर चलना है। हम इस सुंदर बात को याद किया करें कि एंड आया तो कौन आ गया हमारे पास? देखो कितनी अच्छी बात हुई, इससे सुंदर बात किसी और के साथ नहीं हो सकती। अब जब लोग पहचानेंगे, अब तो पहचानना है, अब तो करोड़ों लोग आने हैं, हम तो थोड़े से में ही तंग हो जाते हैं ना भाई, 20,000 आए, 25,000 आए, ऊपर आ रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं, कई संभालने वाले दुखी हो जाते हैं, इतने लोग आ गए, गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है। हम मधुबन छोटा सा, वहां गलियों से जब जाते हैं ना तो आने जाने वालों को बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो लोग तंग होने लगते हैं। अब जब रोज 50,000 आने लगेंगे ऊपर, अब 3,000 तक आते हैं घूमने, रोज 50,000 आएंगे। ब्रह्मा भोजन भी खिलाना पड़ेगा, अमित खिलाना पड़ेगा, विष्णु तैयार रहो, स्टॉक जमा रखो, खिलाना पड़ेगा। बाबा ने कभी कहा था अब रोड से ऊपर तक भीड़ लगेगी, तो कभी कहा था मुंबई से ऊपर तक भीड़ लगेगी, भीड़ तो बहुत लगेगी। अब सोचो जब लोगों को पता चलेगा कि भगवान भाग्य बांट कर चला भी गया, तो कहेंगे अच्छा जिनको भाग्य बांटा उनसे थोड़ा सा हम भी ले लें, आपके पास आने लगेंगे भाग्य लेने के लिए। उन स्थानों पर आएंगे जहां भगवान का पाठ चला, जहां उसने सबको दृष्टि दी, सबके दुख हरण किए, जहां सबको पावन बनाया, जहां बैठकर उसने स्वर्ग रचा, उस स्थान के दर्शन करने आएंगे। देखो भक्ति में क्या क्या होता रहा, आप अगर भिन्न भिन्न मंदिरों की कहानी सुने कि वो क्यों बने, तो आपको पता चलेगा छोटा मोटा वहां काम हुआ, कोई चमत्कार हुआ वहां, तो मंदिर बने। नांदेड़ में सिखों का गुरुद्वारा है, सोने का बना दिया है अब तो मैं उनसे पूछता था भाई पंजाब में सिखों का, ये महाराष्ट्र में इधर कैसे आ गया गुरुद्वारा आपका। हम लोगों से बड़े अच्छे ढंग से मिलते हैं वो लोग, तो कहा हमारे फलाने गुरु 3 दिन यहाँ कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, 3 दिन यहाँ ठहरे। मैं सोचने लगा उनको तो मैंने ही कहा, 3 दिन एक महान पुरुष वहां रहे तो सिखों का तीर्थ बन गया, और जहां भगवान 1,000 बार आए, जहां अनेक महान आत्माओं का वास है, वो तो एक महान आत्मा थी, यहां अनगिनत महान आत्माएं जो पवित्र हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वहां का क्या होगा सोचो, लाइन न जाने क्या क्या हो जाएगा। मिट्टी यहां फर्श पे भी मिट्टी जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं बचेगी, सब लगा लेंगे मस्तक पे, धन्य हो गए हम तो। जो यहां आ जाएंगे वो भी धन्य धन्य करके जाएंगे। तो एक सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम विनाश की बात छोड़ें, ब्राह्मणों के लिए, भगवान के बच्चों के लिए एक अतिंद्रिय सुखों का समय आ रहा है, अतिंद्रिय सुखों का, जहां हम अपने भाग्य को देख कर आनंदित होंगे कि ये लोग हमसे मिलके आनंदित हो रहे हैं केवल, और हम किससे मिले, स्वयं भगवान से, और कोई एक आध दिन नहीं, जीवन भर वो हमारा साथी बन गया, उसने ही हमें रोज पढ़ाया, सदगुरु बनकर हमारी पालना की, हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया। तो बहुत सुंदर दिन आने वाले हैं जब साक्षात्कार की भी धूम मचेगी, और करोड़ों आत्माएं यहां से अपना अंतिम अधिकार लेने के लिए आ जाएंगी। मुक्ति में भी सबको जाना है, मुक्ति का वरदान भी यहीं से मिलेगा, इसलिए हम सभी महामता से ऊपर उठकर, तेरे मेरे से ऊपर उठकर, छोटे विचारों से बाहर निकलकर, अब अपने को तैयार करें। सभी चिंतन करेंगे, सब अपने को तैयार करें कि जब यहां इतने लोग आएंगे तो हमें सबको देना है, हमारे वाइब्रेशन से लोग संतुष्ट होकर जाएं, हमारे दो प्यार भरे बोल से लोग प्रसन्न होकर जाएं, हमारी दृष्टि मिलेगी, वाइब्रेशंस मिलेंगे, उससे उनके दुख नष्ट हो जाएं। बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, दवाइयां नहीं काम करेंगी, हमारे वाइब्रेशंस, यहां का पानी आप पानी पवित्र पिला देंगे, चार्ज करके पिला देंगे, वो औषधि बन जाएगा उनके लिए और लोग जय जयकार करते हुए वापिस घर जाएंगे। करेगा काम ऊपर से बाबा, लेकिन नाम होगा हमारा। हम फिर जोड़ेंगे उन्हें बाबा से, पर काम सब बाबा का होगा। भक्ति में भी तो वही करता है। जड़ मूर्तियां किसी को क्या देंगी, हनुमान किसी को क्या देगा, पत्थर की मूर्ति है। उसके भक्तों को शिव बाबा उसके माध्यम से इच्छाएं पूर्ण करते आए हैं। तो अब भी बाबा हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य कराएगा, लेकिन कराएगा उनके द्वारा जो अपने को उसके योग्य बनाएंगे। बाबा की मदद को, उसके वाइब्रेशंस को भी वही ग्रहण कर सकेंगे जिन्होंने अपने वाइब्रेशंस को उसके समान बनाया है। तो बहुत अच्छी मेहनत सब करें, बहुत सुंदर समय है। अब वैसे भी जनवरी चल रही है और पार्टियां भी नहीं हैं, तो अपने को अधिक से अधिक समय देंगे, बहुत अच्छा अच्छा अभ्यास करेंगे, शरीरीपन का भी, स्वदर्शन चक्रधारी होने का भी, यानी पांच स्वरूपों के अभ्यास का भी, अच्छे योग युक्त स्थिति का भी, अच्छे चिंतन का भी। ये भूलना नहीं है, जितना अच्छा चिंतन मन में रहता है उतने ही अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसे ही कोई योग में बैठे उसके अनुभव, और कुछ सुंदर विचारों के साथ योग में बैठे उसके अनुभव में अंतर हो जाएगा। मान लो आपको एक सुंदर विचार आ गया, बाबा आपने मेरा भाग्य कितना सुंदर बना दिया, आपने मुझे अपने घर में बुला लिया, आपने मेरी पालना की, मुझे अपने कार्यों में लगा लिया, आपने मेरे भाग्य का निर्माण किया, क्या से क्या बना दिया यहीं। फिर जो योग लगेगा वो बहुत खुशी देने वाला, परमात्म प्रेम की अनुभूति कराने वाला, उसकी समीपता का अनुभव कराने वाला होगा। तो सभी सुंदर चिंतन पर ध्यान दें, बाबा से बातें चलती रहें, क्या दिया आपने हमें, राह दिखा दी, अंधकार में थे सत्य मार्ग दिखा दिया है। छोटी बात नहीं है जो ज्ञान दिया है, बहुत बड़ा ज्ञान हम सबको मिला है, अविनाशी रतन मिले हैं। तो स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, ज्ञान का चिंतन होता रहे, फिर अच्छा योग करेंगे तो वो योग बहुत सुखदाई होगा, बहुत सुखदाई, पावरफुल तो होगा ही, बड़ा सुख मिलेगा आत्मा को। आत्मा जैसे तृप्त हो गई तो बहुत अच्छा अपना प्लान रखेंगे 2020 के पूरे के लिए, ताकि ये आगे बढ़ता चले और हम वो कार्य करने में सफल हों जो आने वाले समय में हमें करना होगा, सबको करना होगा। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं, राजयोग माना, ये परिभाषा दी है बाबा ने मुरली में, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो एक। तो ऐसा अभ्यास करेंगे। ओम चंद।
पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, शक्ति कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ।